राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। तो आज बुधवार के सत्संग में भगवद गीता के आप सबका स्वागत है। हनुमान प्रभु जी हमको लाए हैं और राधेश प्रभु जी ने सेवा का मौका दिया है। तीसरा अध्याय भगवद गीता का चर्चा का विषय है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म योग, कर्म का मतलब कुछ करना, लेकिन योग का मतलब भगवान से जुड़ के करना। दुनिया में सब लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। जब भगवान से जुड़ के काम करेंगे तो उसको कर्म योग कहेंगे। तो कर्म और कर्म योग में बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में सब लोग हमको कहते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप हमको क्यों कह रहे हो वैसे? अरे तुम कर्म कर रहे हो तो करते रहो, कर्म योग नहीं कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। और कर्म करने वाले को दोबारा दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। आठवें अध्याय में अर्जुन पूछेगा किम कर्म उच्यते, कर्म किसको कहते हैं? और भगवान कहेंगे भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संज्ञतः। कर्म की संज्ञा क्या है? दोबारा आपको शरीर लेने के लिए बाध्य कर देता है। और कर्म योग क्या है? कर्म करेंगे भगवान को साथ मिलाकर तो कर्म के फल के बंधन में नहीं पड़ेंगे, तो वापस संसार में नहीं आएंगे। तो दोनों में दिन रात का अंतर है। तो भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है और अर्जुन का ये प्रश्न है। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है आप हमको काम में क्यों लगा रहे हो? जब ज्ञान वैराग्य उत्तम मानते हो तो फिर हमको घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, युद्ध के कर्म में? आप बोलते हो कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि योग का आश्रय ले लो, फिर हमको कर्म में क्यों लगा रहे हो? अब ठीक तरह से भगवद गीता को देखें देखें तो दूसरे अध्याय में पहले अर्जुन ने भगवान को गुरु स्वीकार किया, तब भगवान ने अर्जुन को शिक्षा देना शुरू किया। दूसरे अध्याय के सातवें अध्याय श्लोक से अर्जुन ने जब भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया तभी भगवान ने आध्यात्मिक बात बोलना शुरू की। और शुरू क्या किया भगवान ने? पहले शरीर और आत्मा को अलग अलग करके समझाया। आत्मा मुख्य है, शरीर सदा रहने वाला नहीं है, आत्मा अमर है, ये बात कही। तो इससे ऐसे लगता है कभी तो शरीर को छोड़ दो, क्या करेंगे शरीर को, आत्मा चलो हिमालय में चलते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, ऐसा मन में भाव आ सकता है। तो भगवान ने एकदम बोला अभी तक जो मैंने आपको बताया ना वो आत्मा और शरीर को अलग करके बताया था, लेकिन अभी मैं आपको आपका कर्तव्य क्या है वो बताता हूँ। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम्हारे को अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए। तुम अपने कर्म के अपना जो स्वधर्म उसका पालन नहीं करोगे तो तेरे को पाप लगेगा। इसका अर्थ ये है कि हमको इस दुनिया में हम आत्मा हैं हम शरीर नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि कोई काम करना नहीं है बस जाके सो जाना, ऐसा नहीं है। भगवद गीता कहती है नहीं, तुम आत्मा नहीं हो शरीर, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर तुम्हारा तुमको मिला है किसी काम करने के लिए, जो तेरा काम है कर्तव्य वो पूरा करना पड़ेगा। तब अर्जुन ने बोला करना ही पड़ेगा तो कैसे करूं? बोला बुद्धि योग के द्वारा करो। करूं कैसे? बोला मैं तेरे को बुद्धि देता हूं, ऐसे करो। तो भगवान ने काम करने की शैली बताई दूसरे अध्याय में। उस काम करने की शैली में भगवान ने यह कह दिया मूर्ख लोग फल की इच्छा के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग मेरे लिए काम करते हैं। ये भगवान ने एक विवरण बता दिया कृपण फल हेतु, कृपण का मतलब कंजूस। तो अर्जुन कहता फिर मेरे को कुछ फल वल नहीं चाहिए, मैं तो साधु बनना चाहता हूं, काय के लिए कर्म करूं। तब भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं कर्म सबको करना पड़ता है, बगैर कर्म के तो कोई जी भी नहीं सकता है, कुछ करने के बगैर तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन किसके लिए काम करना चाहिए? यज्ञ पुरुष के लिए काम करना चाहिए, भगवान के लिए काम करना चाहिए। यज्ञ पुरुष के लिए काम करने को योग बोलते हैं। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है, और योग का अर्थ भी विष्णु है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो किसके लिए काम करो? बोलो यज्ञ पुरुष के लिए काम करो। जो यज्ञ पुरुष के लिए काम करता है वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। ये तीसरे अध्याय का मेरे ख्याल में आठवां या नौवां श्लोक है। इस श्लोक को पहले, एक श्लोक पहले को समझ लो, भगवान का सीधा सा उत्तर है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर यज्ञ पुरुष के लिए काम नहीं करोगे यज्ञ के रूप में, तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। यज्ञ अर्थ कर्मणों का मतलब कर्म योग से कर्म नहीं करोगे तो कर्म के फल में बच जाओगे। तदर्थम कर्म कौनते है? तद का मतलब यहां यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण, उसके लिए काम करो। मुक्त संग समाचार, फिर बंधन से मुक्त हो जाओगे। और फिर भगवान ने बता दिया, मैंने इस सृष्टि जब की थी ना, ये संसार जब बनाया था तो देवता भी बनाए, मानव भी बनाए, और यज्ञ भी उत्पन्न किया। और फिर मैंने आदेश किया कि ये यज्ञ करो, और ये यज्ञ आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में लड़ना भी यज्ञ है। जैसे ब्राह्मण के लिए अग्निहोत्र यज्ञ करना होता है, ऐसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना यज्ञ के समान धर्म है। तुम ये यज्ञ वाला धर्म नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बन जाओगे। तो मैंने आपको, उसके बाद भगवान ने साफ कह दिया, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए खाता है और यज्ञ नहीं करता है, वो पाप खाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जो कुछ इस दुनिया में आपको मिल रहा है खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, ये सब भगवान का है कि नहीं? आपका है, किसका है? भगवान का है ना। अगर ये भगवान का है और हम भगवान का धन्यवाद भी नहीं करते हैं, ऐसे ही खाते हैं, तो चोर हुए ना। एक बार प्रभुपाद से एक आदमी मिलने आया मायापुर में, बोला सेठ था। बोला प्रभुपाद ने पूछा, हाँ तो आप क्या करते हैं? बोला सीमेंट फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनाते हो? बोला पहाड़ों से। बोला पहाड़ किसके हैं? अब क्या बोलेगा? पहाड़ तो भगवान के हैं, तो इसमें तो भगवान के पहाड़ है, उससे तुम फैक्ट्री सीमेंट बना रहे, उसके ऊपर नाम अपना रहता, तुम चोर हुए ना। भगवान के माल का चोरी करके बेच रहे ना, तो माल तुम्हारा तो नहीं है, भगवान का हुआ ना। बोले नहीं, मैं छोटा चोर हूँ, मैं दानवान देता हूँ ना, मैं दान देता हूँ, आया हूँ मंदिर। बोलो ठीक है, तो थोड़ा तो कम चोर है, कुछ वापस दे रहा है, लेकिन ज्यादा तो इसका यहाँ अर्थ ये है, जो अपनी इच्छा के लिए दुनिया में सब कुछ काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, वो केवल पाप ही खा रहे हैं, क्योंकि अपना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, अपना कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन मानो पूछा होगा कि क्या कहना है, पाप कैसे खा रहे हैं? बोला फिर कि पाप से बचेंगे कैसे? बोला यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुच्यंते सर्व किल्बशी। यज्ञ में अर्पण करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाओगे तो सब पाप से बच जाओगे, नहीं तो केवल पाप ही खा रहे हो। इतना साफ साफ लिखा है कि जो भी दुनिया में तुम करते हो ये भगवान। सुबह उठते कैसे हो? सुबह प्रकाश कैसे होता है? शहर में सूरज उगता है तब ना, तो सूरज कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है? हाँ, सूरज कैसे उगता है? उगता है तब दिन होता है ना। तो जो कुछ भी सूरज उगने के बाद आप जागते हो, दिन में काम करते हो, तो सूर्य की कृपा से जाग रहे हो ना, और इसी सूर्य की कृपा से खारा पानी समंद्र का बादल में ऊपर होके वर्षा में बरसता है, तब तुम्हारी खेती में अन्न होता है ना। तो पानी कौन दे रहा है? सूर्य प्रकाश कौन दे रहा है, धरती अन्न उत्पादन करके दे रही है, तो ये सब भगवान का है कि आपका है या मेरा है या सरकार का है, किसका है ये सब कुछ? अगर ये सब कुछ भगवान का है तो कम से कम हमारे को भगवान के साथ कुछ न कुछ अपना संबंध स्थापित करके फिर खाना चाहिए ना। ये इस अध्याय पूरे का भाव है कि सब कुछ जब आपका है ही नहीं तो जिसका है उसका कम से कम आप धन्यवाद तो करो, उसको कहो आपकी बड़ी कृपा है कि आप सब कुछ हमारे को व्यवस्था करके दे रहे हो। तो ये कर्म योग की परिभाषा ये है। और यहां से फिर आगे कर्म करने की भगवान शैली बताते हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए। मई सन्यस्य सर्व कर्माणि, काम सारे करते रहो मेरे ऊपर छोड़ दो। मई सन्यस्य का मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो, तो आपके ऊपर कैसे छोड़ दें भगवान? बोलो आत्मचेतसा। आत्मचेतसा का अर्थ है कृष्ण भावना में होकर। आप ये समझो जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो फिर सब काम करो। और ये कह के भगवान कहते हैं मई सन्यस्य कर्माणि आत्मचेतसा निर्मम निराहंकार। तुम ममता छोड़ दो कि तेरा है इस दुनिया में, तेरा कुछ भी नहीं है। क्या है आपका बताओ तो जरा, ये शरीर आपका है? हाँ, आपके साथ जाएगा शरीर? फिर तो दुकान मकान को अपना कैसे मान के बैठे हो? जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर दुनिया की सब चीजों को अपना कैसे मान के बैठे हो? शरीर हमारा साथ नहीं देता है, चिख्या तक हमारे साथ जाएगा, लकड़ी में जलेगा, इधर ही रह जाएगा। तो शरीर भी जब हमारा नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है इस दुनिया में। क्या है जो हम अपना माना इस दुनिया में माने? कुछ लाए थे क्या साथ अपने? कुछ लाए थे लोग? कुछ लोग इस दुनिया में कोई बच्चा ऐसा पैदा किया हुआ है कुछ लाया है अपने साथ? खाली हाथ आया है, नंगा आया है, कपड़ा भी एक दो टुकड़ा नहीं लाया है, कुछ भी नहीं लाया है अपने साथ। रोता हुआ आया है, भूखा आया है, नंगा आया है, और फिर 15-20 साल के बाद कहता है दुनिया ही सारी हमारी है, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगी। क्या समझते हो आप लोग, मूर्ख है कि नहीं है? कुछ भी नहीं लाया है और थोड़े दिनों के बाद सब कुछ को अपना समझ रहा है, इसी को माया बोलते। हमेशा समझना चाहिए कि मैं नंगा आया था, रोता हुआ आया था, और वापस यहां से भी मेरे को भेजेंगे तब ये जो कान में प्रेम से डाले हैं ना कौन, ये इयरिंग, ये भी निकाल लेंगे घर वाले सारे, कुछ भी नहीं जाने देते हैं वापस में, एक कपड़ा सफेद सा लपेट के रवाना कर देते हैं, उसमें भी जेब नहीं रखते हैं कि कहीं कुछ चला ना जाए इसके साथ। कफन में जेब नहीं हुआ करता है, मालूम है ना? कफन में जेब होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर जो कुछ है भगवान का है, ये कृष्ण की शिक्षा है भगवद गीता में। इसलिए उसको बालक बन के, भगवान के सेवक बन के, वो सब कुछ का आप सेवा में ला सकते हो, लेकिन अपना बनाने की मूर्खता कभी मत करना। जो अपना बनाने की मूर्खता करता है वो इस दुनिया के बंधन में फंसता है। जो भगवान का समझ के, जैसे मंदिर के अंदर रहते हैं सब, मालिक मंदिर का भगवान है, उधर भी हम भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं, काम तो वही करते हैं जो आप घर में करते हो, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। वहां का मालिक भगवान है और घर के आप मालिक हो। तो आप मालिक हो तो फिर आप बंधन में पड़ोगे, भगवान मालिक है तो बंधन में नहीं पड़ेगा। उधर रहने वाले को कोई अपराध पाप नहीं लगेगा, दोनों में अंतर है दिन रात का। दोनों काम एक जैसे लग रहे हैं, वो भी रोटी, वो भी फुलका बना रहा है, वही पूरी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, आप भी घर में बना रहे हो, शादी का भी बन रहा है, लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर है। वो जिस मालिक का है उसके लिए बन रहा है, और ये जिसका है उसको बाहर निकाल के चोरों का चोर खा रहे हैं, चोर बना रहे हैं, ये सब चोरी का माल है, ये स्मगलिंग का और चोरी का, और भाई ये सब जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये सब चोरी का काम हो रहा है असल में। इसी को काला धंधा बोलते हैं। ये काले धंधे का एक काला धंधा है, वो आप लोग सब जानते हो, जो चोपड़ों में नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये काला धंधा सभी कर रहे हैं कि भगवान के माल को अपना मान के और उसको खा रहे हैं। ये इस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो कुछ हमारा नहीं है उसको हम अपना मान के बैठे हैं। आप जिसको अपना मान के बैठे हो ना, वो आपको नहीं जानता है, मालूम है? आप जिस घर को अपना जान के बैठे वो कल बेच के किसी चोर को दे दो, घर रोएगा क्या कि भैया मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं आपके लिए इतने दिनों से आपको मैंने यहाँ रहने के लिए दिया, घर रोएगा क्या? रोता है? ये सोने का माँ माता जी, ये हार है, मंगलसूत्र आपको डला हुआ है और चूहा इसको ले जाए और काटे बैठ के, तो ये रोएगा कि तुम कहाँ खा रहे हो, मुझे मैं तो गिफ्ट में मिला था, इसको शादी का है तोहफा है, रोएगा क्या? तुम रोएगा, तुमको रोना आएगा लेकिन तुम्हारी चीज कोई नहीं रहोगी, रोएगी। हाँ, गाड़ी को अपना मान के बैठे हैं और गाड़ी को देखा है चोर उठा के ले जाते हैं, बेईमान चाबी गाड़ी रोती है, कह रही किसने कल 15 लाख रुपए दे के खरीदी है, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, ये मेरा मालिक रोएगा, मत करो, ऐसे बोलती है कभी? तुम मूर्खता के सब चीजों को अपना मान के बैठे, वो तुमको जानते भी नहीं, ये मूर्खता है कि नहीं है? जो हमारा नहीं है उसको हम अपना मान के बैठे हुए हैं और जो हमारा है उसको हम भूल के बैठे। भगवान हमारा है, भगवान का ये शास्त्र हमारे लिए है, इन दोनों को हम भूल के बैठे, भगवान और भगवान की शिक्षाओं को भूल के बैठे, जो हमारा है नहीं उसको अपना मान के बैठे, यही इस दुनिया में हमारे आने का कारण है और यही इस दुनिया का बंधन है और कोई बंधन नहीं। निर्ममो, किसी को अपना मत मानो, निरअहंकार, और ये भी अहंकार मत करो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को दे दिया, तुम्हारा था क्या तुमने छोड़ा। ये भी बहुत बड़ा लोग अहंकार करते हैं, देखते हो सामने वाला, ये पूरी ही अस्पताल हमने बनाई, तुमने कहाँ से बनाई, सीमेंट तुमने बनाई, ईंट तुमने बनाई, पानी तुम्हारा है, नहीं फिर तुम्हारा क्या है, ये कागज के टुकड़े, इसके अगर ऊपर गांधी जी का फोटो नहीं हो तो इस कागज की कीमत 1 रुपया के पैसा भी नहीं है, जिसके ऊपर 500 रुपया लिखा है इसलिए 500 रुपया मिलता है, नहीं लिखा है तो इस कागज की कोई कीमत है क्या? ये जो नोट पड़ा है इसकी कोई कीमत है क्या? कागज की कीमत कितनी है? केवल उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है इसलिए उसकी वैल्यू है, उस ठप्पे की केवल वैल्यू है, लेकिन इस नोट की कोई वैल्यू नहीं। तो तुम, मैंने बड़ा त्याग किया, ये अहंकार हो गया, न अहंकार करो न ममता रखो, मेरा क्या है इस दुनिया में, मेरा केवल भगवान है, बाकी सब भगवान का है। ये बुद्धि जब हमारी समझ में आएगी, सब कुछ भगवान का है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है तो सब कुछ भगवान का है, तो फिर सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है तो सब कुछ मेरा है, अब सही आपका है। भगवान को निकाल के मेरा बनाते हैं, ये चोरी, इसको कृष्ण भावना कहते हैं, सब कुछ कृष्ण का है, हम भी कृष्ण के हैं और अब हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, उसी का उसी को अर्पण कर रहे हैं। बस केवल भगवान को जीवन में जोड़ना, यही कृष्ण भावना है। अब यहां ये कहने के बाद भगवान ने कह दिया ये मैं मत, और फिर कहा उत्तिष्ठ, उठो अर्जुन, विगत जो रहा तुम्हारे बुखार को उतारो और युद्ध करो, ये मेरा मत नित्य है, ये मैं मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मानव जाति के लिए मैं कर्म का नियम बनाया है, किसी एक इंसान के लिए नहीं बनाया, हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाया है, केवल किसी एक जाति के लिए नहीं बनाया, मानव के लिए बनाया है, कहीं का भी मानव हो, किसी देश का हो, किसी समय हो, किसी जगह भी हो, उसके लिए मैंने ये भगवद्गीता की शिक्षा सब देशों के लिए है, सब लोगों के लिए है और सब समय के लिए है। श्रद्धयावंतो, इसके ऊपर तुमको श्रद्धा करनी पड़ेगी, अनुसूयंतो, और तुम इसके अंदर दोष दृष्टि मत रखना, तो तुम कर्म करते हुए भी सब बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म भी मुच्यंते, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये बहुत विशेष श्लोक है भगवद्गीता का, कि सब लोग केवल ये बात समझ लें कि सब कुछ भगवान का है, भगवान हमारा है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, इस बात के ऊपर विश्वास हो जाए और भगवान के इन वचनों के ऊपर कोई दोष दृष्टि नहीं हो तो सब कुछ करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। और जो भगवान के वचनों में दोष दृष्टि रखता है, अज्ञानी है, वो इस संसार में नाश हो जाता है। इस श्लोक के बाद भगवान कहते हैं हर एक को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जो अपने स्वधर्म के कर्म को करते हुए गलती करे तो कोई बात नहीं, त्रुटि रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का कर्म अच्छा कर सकता हो तो नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी हमको ऐसे लगता है, कथा सुनते हैं तो बल्कि से कल से तो हम बस अपना काम ठीक ठाक करेंगे, उठ के भगवान का नाम लेंगे, लेकिन हमेशा वो बात रहती नहीं है, दो दिन के बाद फिर भूल जाती है। तब अर्जुन ने कहा, आप कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता है, हमको आप कहते हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाते हैं, तो कौन पाप कराता है? जानते हैं हम, आप सब लोग जानते हैं ये ना कि एक दिन हमको इस दुनिया से जानना पड़ेगा, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इसमें भी किसी को संदेह है कि हम लोग इस दुनिया से जाएंगे एक दिन? हाँ, कोई कह सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा? तो आप जाएंगे, हम जाएंगे एक दिन इस दुनिया से, तो 2010 में हम बैठे हैं, आप 3000 तक लंबी लाइन में कोई भी एक डेट तय कर लो तब जाना है, 2090 में जाओ, 95 में जाओ, कोई तो डेट तय करो कि जाना है, जाना है कि नहीं जाना है? तो ये सत्य है, मालूम है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है? सत्य है कि नहीं है? हमको जाना है, ये एक बात तो सत्य है ना। और हम जाएंगे तब कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, ये भी सत्य है ना। आज तक किसी के साथ कुछ गया नहीं है, ये भी हम जानते हैं, ये भी हमको मालूम है। हम जाएंगे, ये भी हम निश्चय है, और हम कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, ये भी निश्चय है, तो फिर इतने सारे पाप कर्म क्यों करते हैं? तो फिर इतने सारे पाप कर्म क्यों करते हैं जानते हुए भी कि ये कल गलत काम है, फिर क्यों करते हैं? और सभी पाप कर्म कर रहे हैं, कोई नहीं कह सकता मैं नहीं कर रहा हूं। ये जानते हैं कि जाना पड़ेगा, और ये जानते हैं कुछ भी नहीं ले जाना पड़ेगा, फिर भी सब पाप कर्म कर रहे हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न बहुत बुद्धिमान का है। अर्जुन शब्द का अर्थ है, एक तो अर्जुन रज्जु का अर्थ है सरल, जो बिल्कुल सीधा है, जो दिल में है वो साफ कह दे, और दूसरा अर्जुन का अर्थ है डरने वाला। किस बात से डरता है? अधर्म से डरता है। अर्जुन कहता है अधर्म से मुझे डर लगता है, मैं धर्म और नीति पे चलना चाहता हूं। जो अधर्म से डरे वो अर्जुन है। तो अर्जुन पाप से डरता है, कहता पाप क्यों करा, कौन कराता है हमसे? जानते हुए हम नहीं चाहते हैं पाप करना, फिर भी हमसे पाप होता है। ये लोग, आप ये सब लोग, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? हम जानते हैं कि पाप है, फिर भी हम करते हैं कि नहीं करते? जानते हुए भी, बहुत साफ तरह जानते हैं, फिर भी करते, कौन कराता है पाप? ये अर्जुन का प्रश्न सही है कि नहीं है, कौन पाप कराता है? अब लोग कहेंगे भगवान पाप कराता है, इंसान क्या कर सकता है, पत्ता भी नहीं हिलता है तो भगवान ही तो पाप कराता होगा ना। पहले तो भगवान के ऊपर सीधा डालेंगे, पाप भगवान कराता है। अगर भगवान बच गया, अगर हमारे इस भगवान बच गया, भगवान ने बोला, तो फिर कहेंगे शरीर कैसे पाप करेगा, वो तो जड़ है, आत्मा पाप कराता होगा। हम जान छुड़ाने के लिए दो काम करते हैं, या भगवान पाप कराता है या आत्मा पाप करता है, शरीर कैसे पाप करेगा? पांचवें अध्याय में दोनों चीजों का खंडन किया हुआ है। पांचवें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु, आत्मा न कुछ कराता है न कराता है, न कर्म फल संयोगम, न कर्म के फल की दलाली करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है कराता है, कौन कराता है? भगवान कराता है। नहीं, नादते कश्चित पापम, मैं किसी के पाप का जिम्मेवार नहीं हूं, भगवान कहता है, न च सुकृतिम विभु, और न ही किसी के पुण्य की मेरी जिम्मेवारी है। तो फिर आइए, पाप पुण्य आदमी कैसे करता है? बोला अज्ञान के कारण करता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जंतव, ये अज्ञान से उसका ज्ञान डग गया है, तो कराता कौन है पाप? तो पांचवें अध्याय में ये संकेत दिया है, स्वभावस्त प्रवर्तते, ये हमारा स्वभाव हमसे पाप कराता है। स्वभाव किसको बोलते हैं? नेचर। स्वभाव हमारा हमसे पाप कराता है। आदमी का एक पाप करने का भी स्वभाव बन चुका है, कई जन्मों से एक ही काम करते करते आदत बन गई है। जो आदमी जो काम करता है ना, उसका वो स्वभाव बन जाता है। मालूम है स्वभाव किसको बोलते हैं? स्वभाव कैसे बनता है? तीन गुणों से स्वभाव बनता है, रजोगुण का, तमोगुण का और सतोगुण का, और इन गुणों के आपस में मिश्रण होने से स्वभाव बनते हैं। स्वभाव कैसा होता है, इसको ऐसे समझ लो, एक सुनारा था, वो भक्त बन गया। जब सुनारा भक्त बन गया तो भिक्षा लेने गया, किसी ने रोटी दी तो रोटी हाथ में ऐसे तोलता है कि 10-12 ग्राम से ज्यादा तो नहीं होगी। स्वभाव जो था उसका, फिर देखता है कि इसमें कुछ मिक्स है, सीधा नहीं लगता है, आटा फेंट इसमें डलाया, आटे में कुछ कुछ और मिला हुआ है। जो उसका स्वभाव था वो उसी में जा रहा था, एक चोर था। वो सत्संग सुनते हुए साधु हो गया, रात को चोरों के साथ, रात को साधुओं के संग बैठा था। अब रात को क्या करें, रात को 12 बजे नींद तो आए नहीं, काम चोरी करने का था। अब शांत बोलते हैं चोरी मत करो, फिर क्या करता है, एक का धोती उठाया दूसरे के थैले में डाला है, दूसरे का लोटा उठाया तीसरे के थैले में डाला। सुबह उठ के वो बोलता है मेरी धोती, वो बोलता है मेरा लोटा। अब सब बोलता है चोरी चोरी, ये बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा लोटा उसके थैले में, तुम्हारी धोती उसके थैले में। बोला ये क्यों किया, बोला चोर हूँ, मेरी आदत पुरानी है, रात को नींद आती नहीं है। अब आपने कहा चोरी नहीं करो, तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से तो नहीं जाए ना, इधर का माल उधर कर दिया है, अब अपना ढूंढते रहो, आप अपने माल को ढूंढ लो, लेकिन ये मेरा स्वभाव है, मैं नहीं रह सकता, रह नहीं सकता हूँ। तो आदमी अपने स्वभाव से नहीं रह सकता है, इसलिए भगवान उत्तर देते हैं कि ये रजोगुण का स्वभाव तुम्हारा जो है ना, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ तुम्हारा जो स्वभाव है ना, ये तुम्हारे में इच्छाएं पैदा करता है। रजोगुण का क्या परिणाम है, रजो रागात्मक लोभ संगे न बंधनात्। रजोगुण में लोभ होता है, लोभ चाहिए और चाहिए और चाहिए, डिजायर्स, और चाहिए और चाहिए, रजोगुण में इसको बोलते हैं काम। तो भगवान कहते पाप कौन कराते, उत्तर क्या भगवान ने दिया, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। ये तुम्हारा स्वभाव जब रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है तो संसार में तुम्हारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, तुम्हारी कामनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये जान लो अर्जुन कि ये जो काम है तेरा बड़े से बड़ा शत्रु है और इसका कभी पेट भरने वाला नहीं है। महाअश्नो, महाअश्नो का अर्थ है इसका कभी पेट भरने वाला नहीं है। तो इच्छाएं किसी की आज तक पूरी नहीं है दुनिया में, मरते मर जाओ इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। भगवान जरूरत सबकी पूरी करता है, इच्छा किसी की पूरी नहीं हुई आज तक। जरूरत एक चीज है, इच्छा दूसरी चीज है। जरूरत पूरी हो सकती है, इच्छा नहीं पूरी होगी किसी की भी। और यहां ये इच्छा बहुत बड़ा पाप कराती है और ये कभी इसका पेट नहीं भरता है। ये काम कैसा है, तब कहते हैं ये काम, आज का श्लोक है, ये काम हमने हमारे जो हमारा असली स्वभाव है उसको ऐसे ढक देता है जैसे धुआं आग को ढकता है, जैसे मिट्टी शीशे को ढकती है और जैसे आवर से बच्चा पेट में गर्भ में ढका हुआ होता है, दिखता नहीं है। तीन उदाहरण दिए आज का श्लोक जो है, इसमें ये तीन उदाहरण है। आज के इस श्लोक का जो आज का श्लोक है उसमें ये शब्द लिखे हुए हैं, सुन लीजिए। ये क्या लिखते हैं, धूमेना वृत्य वह निर यथा 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 दर्शो मले नच धूमेर आवरण। धूमेर मतलब धुआं, आवर मतलब ढका हुआ, अन्न मतलब अग्नि, धुएं से जैसे अग्नि ढकी हुई होती है। दर्शो मले नच, दर्शो कहते हैं शीशे को, मिरर जैसे मिट्टी से ढका हुआ होता है। और फिर यथा अल्बेनो आवर्तर गर्भ हो, जैसे माता के गर्भ में जोर से ढका हुआ बच्चा है, दिखता नहीं है, तैसे ही तेने आवर्तम, ऐसे ही ढक देती है चेतना को। कौन, काम, काम रूपी शत्रु ढक देता है चेतना को। ये तीन उदाहरण है। मानव जो है उसका उदाहरण ऐसा है जैसे आग के ऊपर धुआं, तो धुआं दिख रहा है तो इसका मतलब नीचे आग है, तो थोड़ा सा उसको हवा दोगे तो आग जल जाएगी, तो धुआं हट जाएगा अपने आप। धुआं जब होता है तो हवा लगाने से आग जलेगी, धुआं हट जाएगा। शीशे को साफ करोगे तब मिट्टी हटेगी, लेकिन बच्चा तो दिखता ही नहीं है अंदर। तो तीन स्तर हैं जिनसे काम रूपी शत्रु हमारी चेतना को ढक देता है। तीनों का उदाहरण प्रभुपाद ने भावार्थ में दिया है। ये पेड़ है ना, पेड़ हजारों सालों तक खड़े होते हैं, इनकी चेतना ऐसे ढकी हुई है जैसे बच्चा माँ के पेट में ढका हुआ है। ये पेड़ का, पेड़ ढका हुआ है, उसको कोई चेतना नहीं है बेचारे, कोई काटे तो काटे, कोई पत्थर मारे तो पत्थर मारे, लेकिन चेक के पेड़ हिल भी नहीं सकता है तो और क्या करेगा। और शीशे के ऊपर मिट्टी का उदाहरण है पक्षी, पक्षी ये पशु पक्षी जो ये घूम उड़ रहे हैं, इनकी चेतना, ये कम से कम चींटी आप मारोगे तो भागेगी, भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए जाएगी, लेकिन पेड़ इतना भी नहीं कर सकता है। लेकिन मानव की चेतना इतनी ढकी है काम ने, थोड़ी सी के ऊपर धुआं है, इसलिए इसको भक्ति के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा धुआं देने से आग जलेगी तो ऊपर से धुआं हट जाएगा। तो केवल मानव शरीर में हमको इस काम रूपी शत्रु जिसने धुएं की तरह हमारी चेतना को ढक के रखा है, इसको हटाया जा सकता है। तो ये तीन उदाहरण इसमें दिए हुए, ये पूरे महाभारत में इन तीन उदाहरणों का वर्णन है कि काम रूपी शत्रु हमारे ने हमारी चेतना को ढक के रखा हुआ है। और हमारे असली ज्ञान को, कौन सा असली ज्ञान? दिव्य ज्ञान। कौन सा दिव्य ज्ञान? जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, उस हमारे दिव्य ज्ञान को भी इस काम रूपी शत्रु ने ढक के रखा हुआ है। ये दूसरा श्लोक इसके बाद वाला है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वेरिण। हमारा ज्ञान, ज्ञान क्या है असल में? ज्ञान किसको कहते हैं? एक ज्ञान की परिभाषा ये है, आत्मा, परमात्मा, जगत, इनका आपस में क्या संबंध है ये जानना, इसको ज्ञान बोलते हैं। आत्मा, परमात्मा और जगत, इन तीनों को जानना और इनका आपस में संबंध क्या है, इसको ज्ञान बोलते हैं। एक और ज्ञान की परिभाषा भगवद गीता में है, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। एक ज्ञान का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है, उसी के शरण में जाना चाहिए। ये ज्ञान दुर्लभ है, महात्मा ऐसा मिलना जिसको ये ज्ञान हो। लेकिन शरीर, आत्मा, परमात्मा, जगत, इनका आपस में संबंध, ये जानने वाले ज्ञानी मिल जाते। तो यहाँ कौन से ज्ञान को ढक के रखा है असल में? हमारा जो हमारा असली स्वरूप है उसको ढक के रखा है इसके कामरूपी शत्रु ने। अब यहाँ प्रश्न प्रभुपाद ने एकदम उठाया कि हमको मालूम हो जाए कि हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन काम, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है इस काम ने, इस संसार में। काम का मतलब यहाँ प्रभुपाद ने एक प्रवचन का, काम का अर्थ ये है कि इस जगत का मालिक बनने की इच्छा। और रजोगुण में होते हुए आदमी के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है। रजोगुण से नीचे तमोगुण में नहीं जाना चाहिए, रजोगुण से ऊपर सतोगुण की तरफ जाना चाहिए। पहले तो एक स्तर पर प्रभुपाद ने कहा हमारे संस्था के बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको सतोगुण में लाने का प्रयास करें। सतोगुण में ब्राह्मण वृत्ति के लोग होते हैं, तो आप सतोगुण पर आएंगे कम से कम तो इस काम रूपी शत्रु से बच जाएंगे। लेकिन भगवान को जानने के लिए सतोगुण से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन सतोगुण में आने से कम ज्ञान हो जाएगा। जो अब ज्ञान ढक गया है वो ज्ञान फिर अनावृत हो जाएगा, ढकन से खुल जाएगा। अब हमको मालूम भी है हमारा शत्रु है काम, तो कहाँ रहता है? भगवान हमको बताते हैं कि तुम्हारा शत्रु कहाँ रह रहा है। भाई हमारे दुश्मन का हमको पता भी लग जाए तो फिर उसको ढूंढना चाहिए ना, ढूंढ के मारना चाहिए ना, तो कहाँ हमारा दुश्मन रहता है, हमारा शत्रु कहाँ है? तब भगवान कहते हैं इंद्रिय मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। कहाँ रहता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है ये तुम्हारा शत्रु। अब तो भगवान ने यह भी बता दिया कहाँ रहता है, और करता क्या है वहां बैठा बैठा? कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम एतैव आह, हाँ एतैर विमोहित एष ज्ञानम आवृत देहिनाम। ये हमारे ज्ञान को ढक के रखने, तीन जगहों पे काम रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों के ऊपर काम रहता है। ये ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाला है, इस काम रूपी शत्रु को तुम जीतो, ये भगवान का आदेश है। तो अब कहां रहता है हमारा शत्रु ये हमको मालूम हो गया, अब इसको जीतना है हमको। ये कृष्ण भावना का उद्देश्य यही है कि इच्छाएं खत्म नहीं की जा सकती, खाना खत्म नहीं किया जा सकता, पेट में भूख लगी तो खाना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद खाओगे तो तो काम से बच जाओगे, होटल में जाके खाओगे तो काम के बंधन में फंस जाओगे। दोनों में अंतर इतना ही है। खाना बंद नहीं किया जा सकता, गाना बंद नहीं किया जा सकता। जाके कोठे के ऊपर गाओगे तो नरक में जाओगे, और कीर्तन में गाओ तो भगवान के धाम जाओगे। खाना भी बंद नहीं कर सकते, गाना भी बंद नहीं कर सकते, नाचना भी बंद नहीं कर सकते। काम वही करने हैं, लेकिन भगवान के लिए करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और कहीं और जाके करोगे तो नरक में जाओगे। सीधे से भगवान के पास जाना सरल है, नरक में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नरक में जाने के लिए पाप करना पड़ेगा, पशु हत्या करनी पड़ेगी, मांस खाना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा, व्यभिचार करना पड़ेगा, इतना बड़ा मुसीबत उठाओगे तब नरक में जाओगे। और भगवान के जाने के पास जाने के लिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे प्रसाद खाओ और भगवान के धाम जाओ, इतना सरल रास्ता है। इसको छोड़ के नरक में जाने के लिए इतनी परिश्रम लोग क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सब जगह एडवर्टाइज लगी हुई है नरक में जाने की, इतना सही मेहनत कर रहे हैं नरक में जाने की, हमें कुछ एडवर्टाइज लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। नरक में जाना बहुत मुश्किल है, कितना परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी चोरी बदमाशी करनी पड़ती है, तब मुश्किल से नरक में भेजा जाता है। और भगवान के धाम जाना इतना सरल है, फिर भी लोग सब नरक में जाना चाहते हैं। यही मुसीबत है, कहें कि कान पकड़ो, ये कान पकड़ लिया, नहीं ऐसे नहीं। एक आदमी आया है, कान पकड़ के दिखाएगा, कैसे, यहाँ से घुमाएगा, यहाँ से करेगा। अरे पकड़ेगा तो कान ही ना, तो ये पकड़ लिया तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन हमको वो देखने, आज बड़ा एक शो है, क्या शो है, कि एक आदमी है कुत्ते की बोली बोल के बताएगा, बंदर की बोली करेगा। अरे तो कुत्ता रस्ते में भौंक रहा है, तुम पैसा देके कुत्ते की बोली क्यों सुनने जाते हो, और वो आदमी कुत्ते की बोली क्यों करता है, तो कुत्ता ही बने, आदमी का जन्म क्यों खराब कर रहे। हमको उल्टे काम पसंद है, सीधी काम के लिए हमारे को बड़ी तकलीफ होती है। इतना सरल सीधा काम है कि भगवान का नाम लो और प्रसाद खाओ और भगवान के धाम जाओ, इतना सरल सा काम है, नहीं करना है। मुश्किल काम चाहिए हमको, थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। मुश्किल नरक में जाने के लिए, जितना चाहिए उतने परेशानी उठाना हो तो उठाते रहो। अब तीन जगहों में हमारा शत्रु रहता है। भगवान कहते हैं पहले इसको रोको शत्रु को, और फिर कहेंगे इसको मारो। पहले रोको, पहले प्रजही फिर जही, पहले रोको और फिर मारो। अब आप सिर्फ एक उदाहरण इसको समझ लीजिए। एक राज है, राजा का, उसका मालिक राजा है, उसका मंत्री है, उसको शत्रु ने खरीद लिया है, मंत्री शत्रु का मित्र बन गया है, उसने पैसे दिए उसको खरीद लिया। उसके सेनापति को भी किसी ने अपना कर लिया है, अब राजा की कहना नहीं मानेगा, और सैनिक विद्रोह के ऊपर उतर आए हैं, वो राजा सुखी रह सकता है अपने राज में? जिसका मंत्री दूसरे के हाथों बिक चुका हो, सेनापति दुश्मन के साथ मिल चुका हो, और सैनिक विद्रोह के ऊपर उतर आए, तो वो राजा सुखी रह सकता है? ये हालत हमारी है, हमें शरीर रूपी राज के राजा हैं। ये क्या है, ये बहुत बड़ा नगर है, नव द्वार पुरे देही, ये पुरंजन का, ये पुर का मतलब बहुत बड़ा नगर है, और रंजन इसमें आनंद लेने वाले हम हैं, हम पुरंजन हैं। पुर कहते हैं शहर को, कानपुर नागपुर ये पुर हो गया ना, तो ये पुर है, और हम इसके अंदर राजा हैं, रंजन करते हैं। हमारा मंत्री बुद्धि है, उसको कामरूपी शत्रु ने अपना मित्र बना लिया है, तो हमारा मंत्री तो चला गया शत्रु के पक्ष में। मन हमारा सेनापति है, उसके ऊपर भी काम ने अपना कब्जा कर लिया है, वो भी दुश्मन के साथ मिल गया है, और इंद्रियां हमारे सैनिक हैं, ये भी कामरूपी शत्रु के तरफ हो गए, हमसे विद्रोह कर रहे हैं। अब हम कैसे इस शरीर में सुखी रहेंगे? इसलिए सब लोग इस दुनिया में दुखी हैं, अपने शरीर में अपने घर में रहते हुए दुखी हैं, अपने दुकान पे अपने मकान में रहते हुए सब दुखी हैं कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर शत्रु बैठा हुआ है, मन बुद्धि और इंद्रियों तीनों जगहों पर शत्रु बैठा हुआ है, ये तीनों स्ट्रेटेजिक पोजिशन पर शत्रु ने आके आक्रमण करके बैठ गया। अब क्या करें, कहां से शुरू करें? खदेड़ना इसको, शत्रु को निकालना है तो कहां से शुरू करेंगे इसको भगाना? वो कहता बुद्धि से, वो कहता इंद्रियों के, इंद्रियां मन तुम्हारा है कहां, पहले लाओ तो सही। मन हमारे पास है ही नहीं तो उसको कहां से हम संभालेंगे। मन आपके बस में है क्या? मन बस में होता तो इस दुनिया में थोड़ी होते। मन कब से बिगड़ा हुआ है? मन हमारे पास रहता ही नहीं है, मन अपनी मनमानी करता रहता है। इन तीनों में बुद्धि, बुद्धि से मन, मनी से इंद्रियां, इंद्रियां स्थूल हैं। जो स्थूल चीज है उसको रोकना आसान है, सूक्ष्म चीज आप रोक नहीं सकते हो। तो स्थूल चीज को पहले रोकना चाहिए, इंद्रियों को। आदो इंद्रिय संयम, भगवान कहते हैं पहले इंद्रियों को संयम में लाओ। जबान पहली इंद्रिय, उसको बोलो प्रसाद खाना है और कुछ नहीं खाना, हरे कृष्ण जपना है, बेकार की बातें नहीं करनी है, ये इंद्रियों को संयम हो गया। पांव को बोलना है मंदिर का दर्शन करने चलना, ये इंद्रियों का संयम हो गया। मन कहीं जाए तो जाने दो, इंद्रियों से बाहर मत जाया करो। मन कैसे जाएगा बगैर इंद्रिय के? मेरा मन कहता है कि मेरे को जलेबी खाने दुकान के ऊपर जाया, लेकिन मैं उठूंगा तब पहुंचूंगा ना, मैं जाऊंगा ही नहीं तो कैसे खाएगा? मन घूमता रहे दुकान के ऊपर, घूम के वापस आएगा कैसे खाएगा? इसलिए कहते हैं कमान मत उठाओ, बाण बाहर जाना है तो जाने दो। तो बगैर कमान के बाण कैसे जाएगा? बंदूक मत लाओ, गोली भले जाए तो बाहर जा दो, गोली बाहर ऐसे हाथ से फेंकने से किसी को मरेगा क्या? तो मन ऐसा है, ये शरीर रूपी बंदूक अगर इंद्रियां नहीं जाएंगी साथ, तो इंद्रियों से, मन इंद्रियों के द्वारा बाहर जाएगा ना, इंद्रियों को तो कम से कम रोक सकते हो ना। इंद्रियों को रोकना तो आपके बस में है ना, पांव हाथ तो आपको कहना मानते हैं कि नहीं मानते? मन तो कहेगा चलो, लेकिन आपको जरा जबरदस्ती रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें हरे कृष्ण मंत्र जपना है, 16 माला पूरी करनी है, उसके बाद मैं यहां से उठूंगा, नहीं नहीं। मन कहेगा अरे क्या है, 5-6 हो गई है, हमें हरे कृष्ण जपता हूँ, मेरी माला है, मेरा हाथ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रभु जी प्रभु जी, ये देखो ये प्रसाद है, लोगे भाई ये भगवान को एक तरफ कर दिया और काम में लग गए दूसरे। इंद्रियों को संयम करना है, लिख दो अब मैं भगवान के साथ मुलाकात करने के लिए बैठा हूं, इस वक्त भगवान से बातचीत मेरी मीटिंग चल रही है, हमारे को डिस्टर्ब मत करो। हरे कृष्णा करना, भगवान से मुलाकात करना है रोज, और मुलाकात में भी भगवान को विनती करनी है मुझे सेवा में लगाओ। ये तो एप्लीकेशन देनी है नौकरी लेने के लिए, और इस एप्लीकेशन के लिए जरा सावधानी से बैठना। ऐसे थोड़ी है किसी सेठ के पास जाओ, हे भैया नौकरी दे दे, वो देखेगा नौकरी, महाराज सेठ साहब हम आए हैं जरा कृपा करके हमको सेवा दीजिए, तो जरा ऐसे बोलते हो किसी के पास नौकरी लेने जाते हो गए? हाँ वो भी अच्छी तरह से चले, तो कम से कम इंद्रियों को संयम में रखने का नियम बनाओ। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियों से मन शक्तिशाली है, मन से बुद्धि शक्तिशाली है, लेकिन बुद्धि को भी शक्ति आत्मा की मिलती है। इसलिए जब तुम आत्मा के स्तर के ऊपर आओगे, कृष्ण भावना में आओगे, तो आत्मा के स्तर पे ऊपर आओगे तो तेरी इंद्रियां मन और बुद्धि सब संयम में आ जाएंगी, और तेरा शत्रु अपने आप वहां से भाग जाएगा, वो वहां रहेगा नहीं तुम्हारा शत्रु। जैसे ही कृष्ण भावना में आप लोग आए, हमारा ये अनुभव है, जैसे ही आपने भगवान का नाम जपना शुरू किया, आपको मतलब पुरानी कोई आदत का, कोई सिगरेट पीने की, चाय पीने की थी, तो आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करता है, वो अपने आप भाग जाएगी। आपको अगर नहीं रुको रुको एक दो दिन, बोलते नहीं नहीं अब मेरे को ये जगह नहीं है, यहाँ भैया हरे कृष्णा वाला आ गया, हम यहाँ नहीं रह सकते। ये हमारा अनुभव है, लाखों लोगों के ऊपर हमने इसका प्रयोग किया है, छोड़ने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप छोड़ जाएगी। जैसे आप भगवान का नाम जपना शुरू करोगे, हर बुराई अपने आप भागने शुरू होगी, अपने आप भागना शुरू हो जाएगी। अब जो बुराइयां हैं, जो हमारा खर्चा बढ़ा रही हैं, उनको भगाने के लिए इतनी बड़ी अस्पताल है, इतनी बड़ी परेशानी है, ये काहे के करने की जरूरत है? केवल हरे कृष्णा बैठ के जब वो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत सरल सा काम है। तो काम रूपी शत्रु को मारने के लिए आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करने का नियम बनाना पड़ेगा। इंद्रियों को संयम करना ही पाप से बचना है। प्रश्न ये था कि पाप हम कर रहे हैं, कौन हमको करा रहा है। और भगवान ने कहा तुम्हारा रजोगुण का स्वभाव तुमसे पाप कराता है, और इस रजोगुण के स्वभाव में तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं कि तुम इस दुनिया के मालिक बनने का प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है जो तुमको इस दुनिया के बंधन में फंसा के रखती है। इसलिए तुम इस काम रूपी शत्रु को पहले इंद्रियों को संयम में करके रोकने का प्रयास करो, और फिर आत्मबल से इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो अथवा इसको मार दो कि इसका नाम निशान भी नहीं रहे। अब हमारे को पाप करने से हम कैसे बचेंगे, ये तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया, हम कैसे पाप करने से बचें। इंद्रियों को संयम में लाने के लिए लाइए भक्ति योग के जो नियम है, उन नियमों के द्वारा इंद्रियों को संयम में लाना है। खाना खाना है लेकिन प्रसाद करके, वही काम करना है लेकिन केवल भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है। केवल इसी को कर्म योग की ये परीक्ष भाषा हो गई कि सारे कर्म भगवान के साथ जोड़कर फिर काम करना है। सारे काम सारी चीजों का मालिक भगवान, सब काम भगवान के लिए, सब फल भगवान के लिए, लेकिन भगवान को आप भोग लगाते हैं तो फिर भी प्रसाद आपको ही मिलता है, लेकिन उस चीज़ का नाम दाल रोटी सब्जी नहीं रह जाता, भोग लगने के बाद वो प्रसाद होके लौट के आ जाता है। जब तक रोटी सब्जी थी तब तक तो उसके अंदर पाप था, लेकिन प्रसाद होके वापस आ गया तो कृपा बन गई। तो बस अंतर थोड़ा सा है, भावना का अंतर है, कॉन्शियसनेस का अंतर है, चेतना का अंतर है, अपनी चेतना को बदलना है। दुकानदारी करने का शौक है, मार्केट में जाके सेल्समैन बनने का शौक है, तो ये काम भी कर लो, पुस्तक उठा के जाओ, जाके जगह जगह लोगों को कहो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, पढ़ लो एक भगवद गीता, तुम दे दो किसी को एक शादी में भगवद गीता की भेंट, क्या तुम गिलास का सेट देगा, घर में जाएगा 3 दिन के बाद टूट जाएगा, गीता दोगे तो उसके पोते भी पढ़ेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, शादी में गिफ्ट देनी है तो ये पुस्तक बहुत सुंदर है दे दो, तो भगवान किसी को दे रहे हो सीधा। तो ऐसे यही काम करो, मार्केटिंग करनी है तो बहुत अच्छा काम है, भगवान की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का प्रेरित भगवान का काम हो गया। तो काम जो आपको काम करना है वो भगवान की सेवा में लग सकते हैं, सभी काम भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं। लड़ना जब भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, मारना जब भगवान की सेवा में लगाया, अर्जुन क्या कर रहा है, लड़ाई ही तो कर रहा है, लेकिन लड़ाई भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान की इच्छा के लिए कर रहा है। तो सभी काम भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं, हमको सेवा केवल ये कला सीखनी है कि हम अपने सब काम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, इसी को भक्ति योग बोलते हैं। भक्ति योग का अर्थ है अपने सारे काम कैसे भगवान से जोड़ के करें, ये भक्ति योग की परिभाषा है। अब भगवान यहां कह दिया कि ज्ञान आपका ढका हुआ है, तो चौथे अध्याय में फिर ज्ञान की परिभाषा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दिव्य ज्ञान क्या है, मैंने ही दिया है ज्ञान, मैं देता हूँ, कोई बाजार से नहीं ला सकता है, कोई अपना ज्ञान बना नहीं सकता है, ज्ञान मैं देता हूँ, धर्म मैं देता हूँ। और फिर कहते हैं ये ज्ञान मिलेगा गुरु के शरण में जाने से, इसको ज्ञान को प्राप्त करना, गुरु के शरण में जाओगे तभी ये ज्ञान प्राप्त होगा, और तभी तुम सारे संशयों से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारे को श्रद्धा तुम्हारी उत्पन्न होगी, तभी तुम मेरे को जान सकते हो। तो ये भगवद गीता हमको जीवन में बंधन से कैसे छूटें लेकिन काम भी सब करते रहे, काम करते हुए बंधन से मुक्त होना ये भगवद गीता की शिक्षा है, काम छोड़ के बंधन से मुक्त होता ये भगवद गीता की शिक्षा नहीं, मरने के बाद भगवान प्राप्त होगा ये भगवद गीता की शिक्षा नहीं है, जीते जी भगवान को जानना है पाना है ये भगवद गीता की शिक्षा है। जीते जी शरीर से भगवान के लिए काम करके भगवान को संतुष्ट करना है ये भगवद गीता की शिक्षा है। मरने के बाद भगवद गीता पीछे पढ़ेंगे तो कुछ लाभ होगा, उसकी जरूरत भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, और हमने क्या किया है ये पोथी रख दिया, कोई मर जाएगा फिर पढ़ेंगे, हमने इसका उपयोग ऐसा करके रखा है, ये ठीक नहीं। कई जगह भगवद गीता में यही शब्द आया, यही का मतलब इस लोक में, इस लोक में सुखी होना है, इस लोक में सुखी होना है तो काम और क्रोध को, क्रोध के वेग को सहना सीखो, ये पांचवें अध्याय में बहुत साफ श्लोक है कि भगवद गीता जीते जागते इंसान के लिए है। शक्नोति यह छोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भगम वेगम स युक्त स सुखी न रह। सुखी होना है तो काम और क्रोध, यही काम क्रोध जो अभी आज बात कर रहे हैं, इसी के वेग को सहन कर लो। जीते जी मरने से पहले, मरने के बाद मैंने बस काम क्रोध छोड़ गया, मरने के बाद काम क्रोध क्या छोड़ेगा, तो शरीर ही छोड़ के चला गया। मरने के बाद काम क्रोध नहीं, जीते जी काम क्रोध के वेग को सहन करना है। सहन करना इसका मतलब आएगा जरूर काम, ऐसे नहीं आप हरे कृष्ण करोगे तो काम आएगा नहीं, काम आएगा जरूर लेकिन आपको सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी। उसको सहन करने की शक्ति आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, संयुक्त, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हो, आपका हाथ भगवान के हाथ में है तो फिर कोई खींच के गिराएगा तो भी नहीं गिर पाओगे। आपका पांव डगमगाएगा, बच्चे का पांव डगमगाता लेकिन पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है तो गिरेगा नहीं। तो सुख कहां है, सुख पिताजी के हाथ में है, सुख संसार में नहीं है, सुख कृष्ण भावना में है। कृष्ण से अलग रह के सब काम करने से हम सुखी होना चाहते हैं, यही काम है, यही काम है कि भगवान से अलग होके हम सुखी होना चाहते हैं, इसी को काम बोलते हैं। और सुखी कब होंगे, जब भगवान से युक्त होंगे। अयुक्तस्य का भावना, अयुक्तस्य का शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान से जुड़े हुए नहीं है तो शांत कैसे रहेंगे, जब शांत नहीं है तो सुख कहां से मिलेगा। तो सुख भगवान से जुड़ने में है, और भगवान से जुड़ने का सरल रास्ता कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 50 मिनट पूरे हो गए, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी को कोई जिज्ञासा।